ね。フリーフリー。जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी आइए गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी तभी गाएंगे जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचरी यमुना तीर बनचरी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি হরে কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে উঁচা গাইয়ে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ রে হরে রাম রাম কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 রাম হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 গাইয়ে হরি হরি বো হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 নিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতম येन তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টম স্থাপিতানেন ভূতলে স্বয়ং রূপ কদা মহ্যম দদাতি স্বপদান্তিকম বন্দে অহম শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলান श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय। राधा राश्री हरि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। चतुर्थ स्कंद हिंदी में अध्याय 25 अथवा श्लोक संख्या 36। दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामानभिप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेहम् स्वबन्धुभिरिन्दमा। दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामानभिप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेहम् स्वबन्धुभिररिन्दम। दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान् कामानभिप्ससे उद्वहिष्यामि तांस्तेहम् स्वबन्धुभिररिन्दम। रम्यान् कामानभिप्ससे तांस्तेहम् स्वबन्धुभिररिन्दम। दृष्ट्या मेरे सौभाग्य से आगतः असि यह आए हो, भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा, ग्राम्यान विषय भोगी कामान इच्छित वस्तुएं अभिप्ससे भोग करना चाहते हो उद्भविष्यामि पूरा करूंगी तान उन सब को ए तुमको अहम मैं स्वबंधु भी अपने समस्त मित्रों सहित अरिम दम ए शत्रु संहारक अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की ए शत्रु संहारक तुम यहां पर आए ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है। अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। इस गले को भी प्रयत्न करना होगा अभी। जीव इस जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है। एक एक वाक्य को भी सुनना होगा, पूरे तात्पर्य को एक साथ नहीं सुनना या अंत में नहीं सुनना, एक एक वाक्य को ध्यानपूर्वक। केवल जप ही ध्यानपूर्वक नहीं करना है, ग्रंथराश्रीमद्भागवत को भी ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुनना है। भगवान की आराधना भी कैसे करनी है, ध्यानपूर्वक ही करनी है। हर बात ध्यानपूर्वक। धारणा ध्यान, फिर क्या होगा, समाधि। तो जीव जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है। हर जीव की बात है, कोई अपवाद नहीं है। या ये सिद्धांत या ये वचन मुझे लागू नहीं होता, ऐसा कोई नहीं कह सकता। एब्सोल्यूट ट्रुथ बस, और कुछ उल्टा सीधा कुछ कहना ही नहीं है। हर जीव इंद्रिय तृप्ति के लिए आता है और उसकी बुद्धि जो स्त्री स्वरूपा है उसे सही मार्ग बताती है, जिससे वह मन भर अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। इसको भी समझना है। किंतु वास्तव में बुद्धि तो परमात्मा या भगवान से प्राप्त होती है। जो प्रत्येक जीव को सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवद गीता में 2:41 में कहा गया है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनंदन बहुशाखा ही अनंताश्य बुद्धयो व्यवसायिनाम। इसका अनुवाद, इस अध्यात्म पथ के अनुगामी अपने उद्देश्य में दृढ़ संकल्प रहते हैं, उनका एक लक्ष्य होता है, परंतु हे कुरु नंदना, जो दृढ़ संकल्प नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। आगे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब भक्त आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता रहता है तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा रहता है। प्रातःकाल में तात्पर्य में सुनेंगे तो दिन भर याद रह सकता है, हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए स्मरण दिलाया जा रहा है भागवत में, नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। तो उसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की सेवा रहता है, वह किसी अन्य भौतिक या आध्यात्मिक कर्म की परवाह नहीं करता। राजा पुरंजन एक सामान्य जीव का प्रतीक है और स्त्री उस जीव की बुद्धि है। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक ये अध्याय है, उसी के अंतर्गत हम इस विषय वस्तु को केवल सुन ही नहीं रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं, स्टडीइंग, केवल रीडिंग भी नहीं। रीडिंग और स्टडीइंग में अंतर है। न्यूज़पेपर का रीडिंग होता या होना चाहिए और भागवत का स्टडी होना चाहिए, कई बार उल्टा होता है, लोग न्यूज़पेपर को स्टडी न्यूज़पेपर एंड रीड भागवत, हम कई लोग दिन भर पढ़ते ही रहते हैं, हर घंटे कोई ग्राहक नहीं है तो अखबार उठा के पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, कभी कभी चर्चा भी होती है, उसके परपोर्ट चलते हैं, लल्लू प्रसाद ने ये कहा उवाच, फिर उसकी चर्चा होती है, हमने सुना है, हम कई गए थे तो कई पर गए थे, कई सारे बुजुर्ग बैठे थे तो एक व्यक्ति पढ़ रहा था पार्ट में और फिर सभी कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपने अपने मत, फिर आगे पढ़ता वो व्यक्ति और अपने अपने भावार्थ, अपने अपनी टीकाएं, किसी के कथन उवाच पर चलती रहती है। लेकिन तो भागवत का स्टडी अध्ययन, फिर अध्यापन भी, या फिर अध्यापन भी करना है, पढ़ाना भी है, इस उद्देश्य से जब पढ़ेंगे तो पढ़ी हुई बात को हम अधिक स्मरण रखेंगे, इसको ध्यान में रखिए। मैं जो सुन रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं, बाद में मुझे कीर्तन करना है, इसका इसको सुनाना है, इस विचार से, इस उद्देश्य से हम अगर इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होगा, स्मरण में, स्मृति में रहेगा। और श्री प्रभुपाद कहा ही करते हैं, तात्पर्य में भी कहे हैं, इस तात्पर्य में नहीं, और तात्पर्य में आप सुनो, आप कहो और आप साक्षात्कार करो। यू हियर, यू टीच और प्रीच एंड यू रियलाइज, एक तात्पर्य में प्रभुपाद इस क्रम से कहे।
सुनो, सुनाओ और समझो। आगे तात्पर्य है वैसे, दोनों के मिलन से, मतलब जीव और बुद्धि के मिलन से जीव इंद्रियों का भोग करता है और बुद्धि उसके भोग की सारी सामग्री जुटाती है। जैसे ही जीव को मनुष्य देह मिलती है, वह परिवार, राष्ट्रीयता, रीति रिवाज में बंध जाता है। सब कुछ भगवान की माया द्वारा मिलता है। इस प्रकार जीव देहात्म बुद्धि में आकर अपनी बुद्धि का उपयोग अपनी इंद्रियों की यथासंभव पुष्टि के लिए करता है। दिष्ट्यागतोऽसि भद्रं ते ग्रामान् कामान् अभिप्सेसे उद्वहिष्यामि तांस्ते हम स्वबंधुभिर् अरिंदमा। शत्रु संहारक, तुम यहां पर आए, ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है, अतः मैं तथा मेरे सभी मित्र तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, उनके जीवन की कथा साक्षात नारद मुनि सुना रहे हैं। ये पुरंजन, ये रूपक, रूपकात्मक या अन्योक्ति कहा है, कहा जा रहा है किसी एक व्यक्ति के संबंध में, लेकिन उसके लिए सारा एलेगोरिकल, सारा कहानी या रूपक अन्योक्ति के रूप में उसको समझाया जा रहा है। अन्योक्ति तो यह राजा पुरंजन, वैसे राजा प्राचीन बर्हिषत् को नारद मुनि समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली समझा रहे हैं। सीधे उनको कहा जाएगा तो शायद मान नहीं जाएंगे, या कुछ डिफेंस हो सकता है, या स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनकी कहानी, उनके जीवन की कहानी, उनकी विचारधारा, एक पुरंजन बनाया, पुरंजन एक व्यक्ति, और उसके संबंध में कहा जा रहा है, किंतु है तो राजा प्राचीन बर्हिषत् के संबंध में, और केवल राजा प्राचीन बर्हिषत् के संबंध में ही ये कथा वार्ता या कथन नहीं है। यह पुरंजन, पुरंजन पुरी में रहने वाला जन व्यक्ति, पुरी में कौन रहते हैं? नवद्वारे पुरे गेहे, एक पुरी है जिसके नौ द्वार है, और वह पुरी ये देह है जिसके नौ द्वार है। ईस्टर्न गेट है, पांच ईस्टर्न गेट है इसके। पूर्व दिशा में 5 द्वार है, पश्चिम दिशा में 2 है, दक्षिण में 1 है, ये उत्तर शायद, ये उत्तर में 1 है और दक्षिण में 1 है, तो 5 और 2, 7 और 2, 9 द्वार। हम लोग गिनते भी नहीं, कईयों को पता नहीं है, किसी को रोक के बड़े लिखे पढ़े व्यक्ति को पूछोगे आप कितने द्वार है आपके शरीर में, उसको अच्छा क्या पूछ रहे हैं कितने द्वार है, तो उसको पता नहीं होता कितने द्वार है। नव द्वार द्वारे पुरे गे है, तो ये पुर है, शरीर ही देह ही पुर है, पुरी है, नगरी है, और इस नगरी में रहता है जन, पुरन जन जो व्यक्ति रहता है, तो देह है पुर और देही है जन, पुरन जन मतलब देह में जिसका निवास है, देही का निवास है, तो सभी का निवास तो देह में ही है, इसलिए सभी के सभी हम कौन हो गए, पुरन जन हो गए। तो ये और किसी के जीवन की कथा नहीं, हमारे जीवन की कहानी बताई जा रही है। घरों घरी मातीचा चुली, ये मराठी हो गया, अभी तो वैसा नहीं है, मराठी में कहावत है कि हर घर में जो चूल्हा होता है वो मिट्टी का ही बना होता है, ये शायद 50 या 100 साल पहले का ये कहावत होगा, अब तो घर घर में गैस का चूल्हा, लेकिन घरों घरी माती चा चुली, मतलब हर घर की वही कहानी है, चूल्हा किस प्रकार का, ये किस प्रकार का, तो हम सब के जीवन की कहानी एक जैसी ही है, हम दिखते थोड़े अलग अलग होंगे जरूर, लेकिन हम वैसे एक ही है, मतलब मायावाद नहीं है, हम एक जैसा ही है, हमारी विचारधारा है, हमारे जीवन का लक्ष्य, बद्ध जीवों की कहानी सुनाई जा रही है। तो पूरन जन, पूरी में रहने वाला जन जीव, और उसकी स्त्री स्वरूप बुद्धि है, यह कहा है। तो मैरिज तो हो गया, वैसे जीव स्वयं को पुरुष मानता है, ईश्वरो अहम, और उसकी स्त्री है बुद्धि, स्त्री स्वरूपा बुद्धि, तो विवाह तो हो गया, जन्म लेते ही उसका विवाह हो चुका है, और अलग मैरिज की आवश्यकता नहीं है, वो एक तो स्त्री है, बुद्धि स्त्री है, फिर और एक जोड़ देते हैं तो दो दो हो गई। तो ये जीवन की कहानी क्यों सुनाई जा रही है, पुरंजन का ये प्रसंग अख्यान, इसको भी नहीं भूलना चाहिए, जब पढ़ेंगे हम अध्ययन करेंगे इस अध्याय का, इस बात को स्मरण रखना होगा। राजो वाचो, राजा परीक्षित कहे थे, न जानामि महाभाग परम कर्मापविद्धि ब्रूहि मे विमलम ज्ञानम एनमुच्चेय कर्मभिः। राजा परीक्षित ने विशेष निवेदन किया है और ये निवेदन भी वैसे हम पुरंजनों की ओर से ही है। प्रश्न पूछना है तो कैसे प्रश्न पूछने चाहिए ये भी हमको पता नहीं है। वैसे हम सही प्रश्न नहीं पूछते इसीलिए सही उत्तर भी नहीं मिलते। हमारे गिरिराज महाराज कहा करते थे, वैसे आस्किंग क्वेश्चन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंस कहते थे। प्रश्न पूछना, कोई प्रश्न पूछ सकता है, पूछता है तो ये साइन ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमता का ये लक्षण है। तो क्लास के अंत में कहते हु इज इंटेलिजेंट, प्रश्न पूछो, कोई किसी का प्रश्न है, किसी ने बोला वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान हो तुम, प्रश्न पूछ रहे हो। लेकिन परफेक्ट क्वेश्चन है तो फिर परफेक्ट आंसर भी मिलेगा। तो राजा परीक्षित जैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए, या अर्जुन ने जैसे प्रश्न पूछे हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए। वैसे कौन नहीं प्रश्न पूछता, हर व्यक्ति प्रश्न पूछता है। कौन व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है, लेकिन अथा तो जिज्ञासा, अथा तो इंक्वायरी काउंटर सभी स्थान पर लगे होते, पूछताछ केंद्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। आप नहीं पूछने पर भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन से कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग तो हो रहा है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। कुछ विचार की क्रांति, जीवन में क्रांति नहीं हो रही है। तो चिड़िया भी प्रश्न पूछती है और मनुष्य भी प्रश्न पूछते हैं, दोनों एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। किम आश्चर्यम, वैसे यक्ष भी पूछे थे प्रश्न और युधिष्ठिर महाराज भी उत्तर दिए थे। महाभारत में कई सारे प्रश्नोत्तर महाभारत में है। अश्रज की क्या बात है, किम आश्चर्यम पूछा तो युधिष्ठिर महाराज कहे थे अहानी अहानी भूतानी गच्छन्ती है यमालयम, शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम अतः आश्चर्यम परम। प्रश्न क्या आश्चर्य के बात, आश्चर्य की बात क्या है, वॉट इज मोस्ट वंडरफुल थिंग। तो युधिष्ठिर महाराज ने नहीं कहा कि ताजमहल वंडर ऑफ द वर्ल्ड, या और भी जो सात वंडर्स है उसमें से किसी वंडर की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा वंडरफुल ये बात है, आश्चर्य की बात है कि सभी तो मरते रहते हैं लेकिन जो बचे हैं वे सोचते हैं कि हम मरने वालों में से हम नहीं है, औरों को मरने दो लेकिन हम नहीं मरेंगे। ये जो विचार है दिस इज मोस्ट वंडरफुल थिंग, ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। ऐसे कई प्रश्न, कब वार्ता, क्या वार्ता, व्हाट इज द न्यूज, ऐसे कई प्रश्न है तो उसका भी उत्तर दिए है भाई। तो क्वेश्चंस भी सही थे, या उसका उत्तर और भी ढंग से, भौतिक व्यक्ति और ढंग से उत्तर देगा और आध्यात्मिक व्यक्ति उसके उत्तर श्रील प्रभुपाद जैसे महाभागवत भिन्न प्रकार से या सही उत्तर देंगे। राजा परीक्षित ने प्रश्न ही सही पूछा है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। न जानामि महाभाग परम कर्मापविद्धि, हमारी मति जो कर्म में है, कर्म में या ज्ञान में, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषयरभाण, ये सारे इसी के संबंध के जो जिज्ञासाएं हैं तो इस विचार से ये कर्म और कर्म कर्म करने वाले को और उसी के कर्म के फलों को भोगने वाले जो है उनको हम क्या कहते हैं, इस्कॉन में क्या कहते हैं हम लोग, आप नहीं कहते हो, कर्मी कहते हैं। कर्मी कर्म करता है फल भोगता है, कर्मी है। कर्मी में भी दो प्रकार है, एक तो भौतिकवादी हो सकते हैं, टोटली मटेरियलिस्टिक पीपल, जो अपने अपने सामर्थ्य और स्वतंत्र जो भी कार्य उनका कुछ कमाएंगे, कुछ प्राप्त करेंगे, उसको भोगेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो देवताओं की सहायता लेते हैं, कांक्षंता कर्मणा सिद्धिम भजन्ते इह देवता। अपनी कोई महत्वाकांक्षा है उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, देवता के पुजारी बनते हैं, और जब उसका फल मिलता है तो क्या करते हैं, उसको भोगते हैं। एक पार्टी देवताओं के बीच में, देवताओं के साथ कोलैबोरेशन, देवताओं को पार्टनर बनाएंगे और कुछ हिस्सा देंगे, ऐसा संकल्प भी करेंगे, नारियल देंगे और बहुत कुछ चाहेंगे, तेरा तुझको अर्पण भी कहेंगे, और क्या कहेंगे साथ में, सुख संपत्ति घर आवे, क्या लागे मेरा, जय जगदीश हरे। तो ये बुद्धि भी कर्मी की बुद्धि है, ये भी कर्मी है, एक प्योर कर्मी है और एक दूसरे सो कॉल तथा कथित धार्मिक कर्मी है। धार्मिक है किंतु है कर्मी, और कुछ तो शुद्ध कर्मी है। तो राजा परीक्षित जानना चाहते कर्माप विद्धि ही, कर्म अप विद्धि ही, बुद्धि चाहिए हमको, ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि ये जो कर्म में जो आसक्ति है, उस कर्म की आसक्ति या बंधन से, ऐसे संकल्पों से हम सदा के लिए मुक्त हो, ऐसा कुछ ज्ञान, ऐसा कुछ बुद्धि ब्रूही में विमलम ज्ञानम। कहिए कहिए नारद मुनि, श्रील नारद मुनि महाशय, ब्रूही में विमलम ज्ञानम एन मुच्चे ये कर्म। वैसे ये राजा परीक्षित नहीं कह रहे, मैंने गलती से कहा, ये तो राजा प्राचीन बरिषत ने निवेदन किया है या प्रश्न किया था, और उसके उत्तर में नारद मुनि उत्तर देंगे, सुखदेव गोस्वामी उत्तर नहीं देंगे यहाँ, ऐसे तो उन्हीं का ही संवाद है, लेकिन संवाद के अंदर संवाद के अंदर संवाद, डायलॉग विद इन अ डायलॉग विद इन अ डायलॉग चलता है। तो राजा प्राचीन बारिशित कहे हैं, ब्रूही में विमलम ज्ञानम, कैसा ज्ञान दीजिए हमें, विमलम विमल मल रहित ज्ञान, ज्ञान जिसमें मल नहीं हो, ये न ताकि क्या हो, मुच्चेय कर्म भी ही मैं मुक्त हो जाऊंगा, किसे, कर्मों से, कर्म भी ही, कर्म में जो मैं फंसा हूं। तो ऐसे बुद्धि से, कर्मी की जो बुद्धि है, ऐसे बुद्धि से मैं मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा कुछ उपाय सुनाइए, ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए, ऐसा ये संवाद प्रारंभ यहां पर होता है, उसके उत्तर में सारा ये अध्याय, और अध्याय के ऊपर अध्याय है, वैसे कई अध्यायों में नारद मुनि उसको समझा रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय या ये संवाद है। पर हम खुद को समझना चाहते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति, हम है कौन और क्या हो गया, हम माया में हैं तो कैसे हैं, इन सारी बातों का बड़ा विस्तृत वर्णन और बड़ा इंटरेस्टिंग बनाए हैं, मनोरंजक भी है, एंटरटेनिंग भी है और एनलाइटनिंग भी है, एंटरटेनमेंट है और एनलाइटनमेंट साथ ही साथ यह हो रही है। तो दिष्ट्या अगतो भद्रम ते, अरिंदमा इस वचन में, पिछले कई वचनों को मैं भी देख रहा था तो ये पुरंजनी, पुरंजन तो जीव हुआ और पुरंजनी कौन, उसकी बुद्धि, भोग विलास के साधन जुटाने वाली कौन होती है, बुद्धि होती है। लोग बहुत लिखे पढ़े बनना चाहते हैं ताकि क्या हो जाए, भोग विलास के साधन जुटा सकते हैं, अधिक अधिक। तो इस पुरंजनी को, या पुरंजनी ने, वैसे पुरंजन को कई अलग अलग ढंग से संबोधित करती है, कैसी बुद्धि जो स्त्री रूपा है, कैसी खुशामत कर रही है, इसका भी ये नमूना है। उसको कही है, हसंती वीर मोहिता, हे वीर कही है इस जीव को, बुद्धि या साधारण जीवात्मा को बुद्धि क्या कह रही है, तुम कौन हो, तुम वीर हो, यू आर अ हीरो। इस जीव को क्या लगता है, मैं हीरो, स्त्री कह रही हीरो, मैं हीरो, बुद्धि कह रही है, तो वो हां में हां मिलाना शुरू करता है। अल्टीमेटली किसी ने तो मुझे पहचान लिया, मैं कौन हूं, वीर। फिर आगे वो कही है, पुरुष अर्षभ, तुम वीर ही नहीं हो, पुरुष अर्षभ, सारे पुरुषों में तुम श्रेष्ठ हो। फिर और भी अच्छा लगने लगा उसको, केवल मैं वीर ही नहीं हूं, लेकिन सभी वीरों में महावीर, पुरुषर्षभ, पुरुष श्रेष्ठ। आगे क्या कही, कई बार कही है वो, फिर कहती है, मानद नरा नार्यश्च मानद, हे अत्यंत सम्माननीय, तुम कैसे हो, सम्माननीय, ऑनरेबल, तुम्हारा सम्मान सभी करते हैं या करेंगे, ये पहले के श्लोक में था। आज के श्लोक में वो क्या कह रही है, अरिंदमा, हे शत्रु संहारक। भगवद गीता में भगवान कहे हैं, जो व्यक्ति the demoniac and divine nature, देवी संपदा, ओके, असुरी संपदा वाला व्यक्ति क्या सोचता है, ये जो मेरे शत्रु थे इसको तो मैंने ऐसे पहले उड़ा दिया, किया हूं, वो जो बचे हैं उनको भी मैं परास्त करने वाला हूं, ऐसा बद्ध जीव सोचते रहता है। तो वही हे शत्रु संहारक, शत्रु संहारक हो, और दिष्टो दिष्ट्या आगतो सी भद्रम ते, तुम यहां आए हो, तुम्हारा कल्याण हो। एक कल्याण करने वाली है बुद्धि, आशीर्वाद दे रही है, तुम्हारा कल्याण हो। क्या करूंगी मैं? काम्यान कामान अभिप्ससे, तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, भोग विलास की जितने सारे तुम्हारे विचार है, कामान उन कामों को, काम वासनाओं को पूरी करने वाली हूं मैं, वादा निभाऊंगी, प्रॉमिस। उद्भविष्या पूरा करूंगी तान ओ तान कामान उन काम वासनाओं को, और मैं अकेली नहीं हूं, स्वबंधु भी ही, मेरे कई सारे बंधु बांधव भी है। बुद्धि के बंधु बांधव कौन है? इंद्रिय बंधु बांधव है, मन भी, मनः षष्ठाणि इंद्रियाणि, वह भी बंधु बांधवों में है। सुखदेव गोस्वामी भी कहे हैं, देह अपत्य कलत्रादिषु, और आगे असत सैन्येषु, ये सारा सैन्य खड़ा करूंगी मैं, देह अपत्य कलत्रादिषु। या यश्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के, ये कर्मियों का विचार है, उनके पास जो बुद्धि है, या हम बद्ध जीव, अब भी जो बद्धता जो बची है हम में, वो बद्ध बुद्धि कैसी सोचती है? यश्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के, तीन धातु के शरीर को आत्मबुद्धि, मैं हूं, ऐसा यहां से प्रारंभ होता है। सारा जो भ्रम है, सारा जो अज्ञान है, सारी जो माया है, वैसे दो ही शब्दों में कही है, दो छोटे शब्दों में कही है, सारी माया सारा भ्रम। क्या कौन से दो शब्द है? एक है मम और दूसरा है अहम। मम इति, इति मतलब इतना ही, इति मतलब फुल स्टॉप, और कुछ नहीं है। सारी मोह माया क्या है? मम इति, अहम मम, अहम मम, पहले अहम, अहम ये शरीर, शरीर अहम, यशास्ति बुद्धि कुणपेत्री धातु के, और दूसरा है मामा, फिर इसके साथ जो जुड़े हैं स्वबंधु भी ही, सब आ गया, देहापत्य कलत्रादिषु। यह स्वधि, आगे भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में जब संतों को संबोधित कर रहे थे तो भगवान कहे, ये वचन कहे भगवान, तो धी बुद्धि होती है स्वधि। व्यक्ति इनको खुद का मानता है, किसका? तात्पर्य में प्रभुपाद लिखे हैं, वैसे अपना परिवार, अपनी राष्ट्रीयता, रीति रिवाज, इसमें बंध जाता है, प्रभुपाद कहते हैं। तो स्वधि, स्वधि में क्या है? कलत्रादिषु, कलत्रा आदि, कलत्रा और कौन कौन और क्या क्या, कलत्रा के साथ बहुत कुछ आता है, स्त्री के साथ बहुत कुछ आता है। स्त्री मतलब एक शब्द का, स्त्री मतलब विस्तार, स्त्री मतलब विस्तार, बटाला दिली ओसरी, भट हाथ पाए पसरी, मराठी में कहते हैं। कोई भट्ट भटजी जा रहे थे तो किसी सदगृहस्थ ने उनको कहा कि आप वरांडे में रहिए ना, थोड़ा आपके लिए कोई स्थान नहीं है। तो उस भटजी को जब वो स्थान दिया तो भटजी ने क्या शुरू किया, हाथ पाई पसरी, हाथ और पैर फैलाने लगा। बाहर रखा था सामान, फिर अंदर रखा उसने और धीरे धीरे अधिक अधिक कमरे घेरने लगा। और मेरी पूजा यहाँ होगी, मेरा ये यहाँ होगा, मेरी पोथी यहाँ होगी, मेरा ये यहाँ होगा। तो भटाला दिली ओसरी दी, वरांडा दिया था, हाथ पाए फैलाया उसने। तो स्त्री को भी, स्त्री का ऐसा स्वभाव, फिर बुद्धि का कहिए, स्त्री का कहिए, तो स्त्री की, स्त्री पुरंजनी है, स्त्री का भी शरीर है और शरीर, स्त्री की भी स्त्री है, स्त्री की भी स्त्री कौन है, बुद्धि है, उसकी अपनी बुद्धि है, और पुरुष भी स्त्री है और उसकी बुद्धि स्त्री है। तो दोनों भी वैसे अपने में ओम पूर्णम अधः पूर्णम, पूर्णात् पूर्णम उदः, दोनों भी कंप्लीट है। ये दोनों भी पुरुष और स्त्री साथ ही है, पुरुष का शरीर है उसकी बुद्धि है, स्त्री का शरीर है उसकी बुद्धि है, और भी एक कंबाइंड, जब दोनों का मिलन होता है तो फिर पूछना ही क्या। भोग विलास की बुद्धि और कंप्लीट पुरंजन हो गया, फिर कॉम्बिनेशन, दोनों मिलके जब एकत्रित हो जाते हैं तो फिर से सारा संसार अहम ममेति का विस्तार होता है और उसका कोई अंत ही नहीं है। जितना भी प्राप्त हो स्त्री को, स्त्री को कहो या इस कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में बुद्धि को कहो, पूरा नहीं होता है। अब एक सर्वे हुआ, anyway, ग्लोबल सर्वे, तो ये पता लगवाए उन्होंने कि भोग विलास की बुद्धि इतनी बढ़ चुकी है मानव जाति में, तो इस पृथ्वी पर जितने भोग विलास के साधन है, एक पृथ्वी से काम नहीं बनेगा। उनका कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो स्टैंडर्ड है एंजॉयमेंट, उस दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम दो पृथ्वियां चाहिए। और इफ वी गो बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड से देखा जाए तो पांच पृथ्वियां चाहिए। पांच पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेस है भोग विलास के साधन, पांच पृथ्वी पर के होंगे, फाइव टाइम्स, पांच गुना अधिक, तब कुछ समय के लिए, फिर और बढ़ाएंगे तो फिर और 25 पृथ्वियां चाहिए। इसीलिए लोग खोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर, खगोल शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और कई। और वैसे एक साइंटिस्ट ने यह भी कहा ही है, स्टीफन हॉकिंग ऐसा कुछ नाम है, आपने सुना हो, फिजिसिस्ट, बड़ा बड़ा नाम ही है। उन्होंने कहा कि उनका सुझाव है पृथ्वी पर जो लोग हैं उनको ये पृथ्वी खाली करनी चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जो हमने ही बढ़ा दिया। इस पृथ्वी का तापत्रय जो है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण कई सारे कष्ट कठिनाई अब मनुष्य महसूस कर रहे हैं, वर्षा का, ये जो क्लाइमेट चेंजेस, कई बहुत अकाल पड़ रहा है तो कई दुष्काल है तो कई बाढ़ है तो कई क्या है तो कई क्या, इतनी गर्मी है कभी अनुभव नहीं की थी। तो ये और भविष्य में होने वाला है, और आने वाले 50-100 वर्षों में इस पृथ्वी का और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करो। तो साइंटिस्ट ने कहा, जिन पर हमने अब तक विश्वास रखा इतने सालों से, उनको ही गुरु बना दिया हमने, ये पुराने प्राचीन गुरु भगवा वस्त्र पहनने वाले, उनको लोग उनसे नहीं मानने लगे उनकी बातों को, तो गुरु बन गए, साइंटिस्ट बन गए गुरु, उनकी बात को मान के हम अंधश्रद्धालु नहीं है, हम तो मॉडर्न है, हम आधुनिक है, हम अलग से सोचेंगे। तो वे लोग, वे साइंटिस्ट ही अब कह, नहीं नहीं नहीं, अब हम पर निर्भर नहीं रह सकते आप, आप क्या करो। साइंटिस्ट ने कहा कि यहां के रहने वाले लोगों को, जैसे कोई बोट में बैठे हैं और उस बोट में कोई खतरा है, अंदर पानी आ रहा है या वो बोट डूबने ही जा रही है, तो क्या करते हैं, एक लाइफ बोट खोजते हैं या लाइफ बोट के साथ जुड़ी होती है, इस बोट से उतरो और दूसरे बोट में बैठो। ये बोट तभी क्या होगी, गिरने वाली या डूबने वाली है, तो हरी आप जल्दी करो, उस बोट में बैठो। तो साइंटिस्ट अब कह रहे हैं कि पृथ्वी बोट है, इस बोट को खाली करो, डूबने वाली है, और कोई बोट, लाइफ बोट खोजो, कोई ग्रह नक्षत्र कोई प्लैनेट खोजो। तो भोग विलास की कोई मर्यादा ही नहीं है। पृथ्वी पर जो भी हमारे इंद्रिय तृप्ति के या साधन है उससे प्रसन्न नहीं है हम। छोटे मोटे दुकान हुआ करते थे, उसे काम चल ही रहा था, लेकिन हम कितने मोटे, पूरा शहर ही एक दुकान हो, दुकानदारी जहां तहां हो रही है। पहले तो अपना बाजार चल रहा था दादर में कुछ समय के लिए, अपना बाजार वो भी लगा था बहुत बड़ा बाजार है अपना बाजार के सामने अब जो मॉल कल्चर आ गया, मॉल कल्चर, फाइव स्टार होटल कल्चर। पहले लोग अस्पताल में, नहीं नहीं, पहले तो होटल में एडमिट होते हैं, और होटल से कहां ट्रांसफर होते हैं, अस्पतालों में, और अस्पताल भी फाइव स्टार, और लाइफस्टाइल कहते हैं, मरेंगे तो स्टाइल से मरेंगे। और मॉल के सामने कुछ घोल ऐसा स्टाइल नामक भी पता नहीं क्या है, पता है स्टाइल लिखा होता है, स्टाइल लाइफस्टाइल लिखा होता है। यहां की लाइफस्टाइल को आप अपनाओ और फिर लाइफ स्टाइल से मरो। अब जो साधारण थे, कम बुद्धि वाले थे, तो देसी दारू पीना ठीक था, अब तो और अधिक बुद्धिमान हो गए, अब क्या होगा, बैग पाइपर या समथिंग एल्स। हम अनाड़ी या देहाती थोड़े ही है, चाय पीने वाले या देसी दारू पीने वाले, हम तो अभी मॉडर्न, तो ऐसी फाइन वाइन पिएंगे तो फाइन वाइन होगी। तो सीधे ताजे ताजे अंगूर खाने के बजाय, अंगूर का जूस पीने के बजाय, उस अंगूर के जूस को क्या करो, सड़ा दो, क्या क्या, और फिर उसका कुछ बना दो, उसको पियो, फिर नशा आ जाती है। और फिर कहते हैं कि ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग यू कैनॉट मिक्स, डोंट मिक्स ड्राइविंग एंड ड्रिंकिंग। तो शराब पी के व्यक्ति अगर गाड़ी भी नहीं चला सकता, तो शराब पी के व्यक्ति जीवन की यात्रा को कैसे चलाएगा। और जब नशा में आ जाता है, तो फिर उसको विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसको विपरीत बुद्धि प्राप्त होती है, और फिर विनाश की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम, आगे फिर क्या और कुछ होता है, संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामान, तो काम की जो बात, तुम्हारे सारे इच्छाओं की पूर्ति मैं करूंगी, बुद्धि कह रही है या स्त्री कह रही है। महाशय, हे वीर, ये मनुष्य श्रेष्ठ, ये ऐसे तुम वैसे हो, तो तुम्हारी सारी इच्छाओं की काम ग्राम्यान कामान अभिप्स से तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामान, और काम वासना जब जगती है तो कामात क्रोधो भी जायते, काम से उत्पन्न होता है क्रोध। तो सिनेमा के टॉपिक कितने होते हैं या थीम में क्या क्या होता है, सिनेमा टीवी जो दो टॉपिक होते हैं, कामात क्रोधो भी जायते, काम और क्रोध, सेक्स एंड वॉयलेंस, ये बेस्ड ऑन गीता टीचिंग्स ऑफ गीता, गीता में समझाया है काम से क्रोध। और क्रोध क्या करता है फिर, क्रोधात भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो यही बुद्धि जो काम स्वरूपा या स्त्री स्वरूपा, ये जो बुद्धि है वो कह रहे कि मैं तुम्हारे सारे इच्छाओं की पूर्ति करूंगी, लेकिन सारी इच्छाओं की पूर्ति तो कभी होने वाली नहीं है, तभी तो क्रोध होगा। और क्रोध से फिर स्मृति में विभ्रम, और फिर आगे बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से प्रणश्यति। इसलिए सावधान, तो जो सचमुच बुद्धिमान है वो क्या करेगा, ध्यायतो विषयान पुंसाम, जब विषय का ध्यान हो रहा है या विषयों को देख रहा है तो झट से क्या करेगा, कुर्मो अंगानी व सर्वशः, जैसे कुर्म क्या करता है, कछुआ क्या करता है, कोई खतरा है तो झट से अपने अंगों को समेट लेता है। तो कोई योगी देख रहा है, कोई इंद्रियों के विषय है तो आगे नहीं बढ़ता, आंख बंद करेगा, कान आंख बंद वहां से जाएगा, नहीं बुद्धि का उपयोग करेगा। तो बुद्धि, यह जो बुद्धि की बात है, तो कामान ग्राम्यान कामान अभिप्स से, भौतिक काम वासना, ग्राम्य कथा या साधारण चीप सुख कहो, या चीप सस्ता, सब सस्ता है। टॉक अब क्या हुआ, सस्ता मोबाइल के अभी भाव या रेट्स कम हो गए, सस्ते हो गए, जैसे भाव गिरते जा रहे हैं उसके साथ सस्ता टॉक, चीप टॉक भी बढ़ रहा है। एवरीवन इज टॉकिंग, कोई सुन नहीं रहा, सब बोल ही रहे। द बॉयज एंड गर्ल्स भी बोल रहे हैं। तो ये विनाश की ओर पहुंचाने वाली बात है, क्रोध, कामात क्रोधो भी जायते, फिर बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात विनश्यति। तो इस ये जो बुद्धि है, स्त्री स्वरूपा या काम स्वरूपा बुद्धि, और उसके संगी साथी भी है, ये भयानक है, खतरनाक है, विनाशकारी है, ये बात यह समझाई जा रही है। तो हमें बुद्धि चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए, दोनों बुद्धि वैसे भगवान से ही प्राप्त है, भगवान की माया तो भगवान की ही है माया, तो माया ने बुद्धि दी या सीधे भगवान ने बुद्धि दी, एक माया बुद्धि देती है, दूसरे भगवान बुद्धि देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम भगवान की सेवा को प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना में भाव क्या है, भगवान हमें सेवा दो, हम आपके हैं, सेवा दो। तो सेवा देंगे जब भगवान और हम सेवा करेंगे तो क्या होगा, ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे, स्वतः स्वयं भगवान बुद्धि देंगे। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि। तो कर्मियों को भगवान बुद्धि देते, सारे संसार को बुद्धि भगवान दे रहे, सारे पशु पक्षी सबको बुद्धि दे रहे हैं, मनुष्यों को भी, कुछ मनुष्यों को भी इस प्रकार की बुद्धि दे रहे हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ मनुष्यों को, समहात्मा सु दुर्लभ, जो भगवान की सेवा में रत है, वो सेवा को दे के भगवान प्रसन्न होकर उनको बुद्धि देते हैं, ताकि वो बुद्धि भगवत स्वरूप है। ये माया की दी हुई बुद्धि, स्कूल कॉलेज में पढ़ के हम बुद्धिमान बनते हैं तो ये मायावी बुद्धि है, और जब हम भगवान की सेवा करते, भगवान के नामों को उच्चारण करते हैं, तो भगवान जब बुद्धि देते हैं ये भगवत स्वरूपा है, भगवान बुद्धि दे रहे हैं। और इन कंक्लूजन, तो जीव पुरुष नहीं है, जीव ने स्वयं को पुरुष समझा है और बुद्धि को वो स्त्री मानता है, और स्त्री उसके सारे उपभोग के सामान जुटाती है। इसके स्थान पर जब जीव समझेगा कि मैं ही स्त्री हूं या मैं ही दास या दासी हूं, और पुरुष कौन है, गोविंदम आदि पुरुषम, भगवान पुरुष है, तो ये शिफ्ट या पैराडाइम शिफ्ट जब होगी, तो जीव ने जो स्वयं को पुरुष मान के बैठा है, तो स्वयं को पुरुष मान रहा है तो फिर उसको स्त्री चाहिए, उसकी बुद्धि स्त्री है या और स्त्री है, लेकिन वो जब समझेगा कि मैं स्वयं ही स्त्री हूं, मैं स्वयं ही प्रकृति हूं और पुरुष है भगवान, समझ गए, ये जो मैरिज है, जीव ने पुरुष समझाया स्वयं को, ये भ्रम है, और बुद्धि या स्त्री को स्त्री समझता है, इसके स्थान पर स्वयं को जब समझेगा कि जीव कृष्णदास, ऐ विश्वास कर लो तो और दुख होना, दुख समाप्त होगा जब जीव अपनी जो स्थिति है, वो जो खुद जो भी है, उसको समझेगा मैं पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं खुद ही स्त्री हूं, और पुरुष तो वैसे पुरुष एक ही है, वो कृष्ण है, भगवान है, बाकी सब स्त्रियां हैं, स्त्रियां तो स्त्रियां है ही और पुरुष भी स्त्रियां ही है, दोनों स्त्रियां हैं। ओ वाह, तो इस ज्ञान, इस साक्षात्कार के साथ फिर एक नई दिशा, एक नया गंतव्य स्थान, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरणों की सेवा, और फिर इस विचारधारा से, जैसे राजा प्राचीन अभिषेक पूछे थे, मैं जो कर्म में जो आसक्ति है या ज्ञान में आसक्ति से मैं मुक्त होना चाहता हूं, कुछ विमल ज्ञान दीजिए, तो ये विमल ज्ञान दिया जा रहा है इन अध्यायों में, पुरंजन अख्यान में, और ये पुरंजन और कोई दूसरा तीसरा नहीं, हम ही पुरंजन है,
हमारे जीवन की कहानी हम ही पढ़ रहे हैं, तो जब सीखेंगे समझेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। तो भगवान को बुद्धि दे भगवान, प्रार्थना करें। हम भी जब छोटे थे तो हमारी मैया भी मंदिर में जब हम जाते तो कहते हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। जब हाथ जोड़ते तो कहते फिर कहो भगवान हमको बुद्धि दे, भगवान बुद्धि दो, ये देवा बुद्धि दे। फिर आगे चल के जब भगवान को हमको बुद्धि दे ही दी, हरे कृष्ण भक्त बनाया बुद्धि दे के, तो फिर हमारी मैया ऐसी बुद्धि थोड़ी देने के लिए कहा था हमको, कहा पता था कि भगवान ऐसी बुद्धि तुमको देंगे। तो इसे दो प्रकार की बुद्धि का अनुमान लगा सकते हैं, दो प्रकार की बुद्धि। और बुद्धि हमारे जीवन का संचालन करती है, बुद्धि को कहा है ड्राइवर। तो गाड़ी में या हवाई जहाज में मुख्य प्रमुख व्यक्ति इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, वो पायलट है या संचालक है। पीछे के लोग सो भी जाए तो चलेगा, लेकिन पायलट सोएगा तो, या कार चलाने वाला एक दुल्की एक अपघात करे, एक झपकी एक अपघात एक्सीडेंट। तो बुद्धि एक एक झपकी के पूरे जीवन में अगर बुद्धि सोई रहेगी फिर क्या होगा। तो भगवान बुद्धि देने के लिए तैयार है, उनके पास कितनी बुद्धि है बहुत खजाना है भगवान के पास बुद्धि का। सद असद विवेक बुद्धि, बुद्धि का फंक्शन ही है सद असद, सही गलत। तो वाह, ऐसी बुद्धि हम सबको भगवान दे। एन माम उपयांति दे, ताकि हम उनको प्राप्त करें, उनके अधिक निकट आए। सारी व्यवस्था तो भगवान ने करके रखी है, उस व्यवस्था को समझना है और उसको अपनाना है। तो फिर भद्रम ते, यह तो ये स्त्री रूपा बुद्धि कह रहे तुम्हारा कल्याण हो, तो उस बुद्धि का भौतिक बुद्धि का सुनने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, अभद्र होगा, भद्र नहीं होगा। पुरंजनी को कहना चाहिए अभद्रम ते, तुम्हारा क्या हो विनाश हो, आ जाओ मैं तुम्हारे सारी इच्छाओं की पूर्ति करती हूं, अभद्र हो विनाश हो तुम्हारा। तो कह तो रही कुछ उल्टा कह रही है, तू उस उल्टे को ही हम सुल्टा समझते हैं। ये माया या बुद्धि कुछ उल्टा कहती है उसको हम, माया का तो यही नाम है, जो नहीं है वो है कहना, ये तो माया है माया। लेकिन हम जब समझेंगे नहीं नहीं तुम गलत हो, तुम माया हो, तुम गलत हो, हमारा कल्याण किन बातों में इसको तुम नहीं जानती हो, तुम्हें हम नहीं सुनेंगे, गेट आउट, चली जाओ यहां से, हमको ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए विनाशकारी, हम तो भगवान से बुद्धि लेंगे, या भगवान से लेंगे या भक्तों से लेंगे या शास्त्र से लेंगे आचार्यों से लेंगे बुद्धि। तो बुद्धि कल्याणकारी बुद्धि, भगवान के धाम में पहुंचाने वाली बुद्धि, जीव का उसी में कल्याण है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो प्रश्नोत्तर नहीं करते, देरी हो गई आपको, अभी आपका प्रश्न होगा प्रसाद कब होगा, यही प्रश्न है प्रसाद होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो प्रसाद है,
ये उत्तर है। एक तो प्रश्नोत्तर हो गया। ओके ठेक प्रसाद, हाँ ठीक है ना, क्या कोई ऐसा कोई ज्वलंत कोई प्रश्न है? ओके ऐसा तो कोई नहीं लग रहा है, कोई कोई फाइट नहीं कर रहा है प्रश्न के लिए। ओके हाँ है, एक प्रश्न भी है कि इनको प्रसाद देना है, प्रसाद भी है, दोनों भी है।
हमारी हम सुनते महाभागवतम हरिनाम सुनते हैं, तो इतनी शक्ति हरिनाम में है, भागवतम में सब कुछ है, तो हमारी बुद्धि विमल क्यों नहीं जल्दी होती है?
हम हम आसक्त है, पश्यन अपि न पश्यति तेषां प्रमत्त निधनम। यस ओके, तेषां प्रमत्त निधनम, ऐसा उत्तर दिया है भागवत में। प्रमत्त निधनम, हम लोग इतने आसक्त है, अभी अभी ऐसे प्रश्न पूछ रहे या उत्तर ढूंढ रहे हैं, सुनने को मिल रहा है, लेकिन जन्म जन्मांतर के लिए तो हम और ही कुछ सुन रहे थे, और ही बातों में आसक्ति थी, दुर्बुद्धि थी, गुमराह कर चुकी थी, तो वह तो उल्टे से पुनः सुलटा हो जाना, गुमराह हो चुके थे तो सही मार्ग पर आने में एक कारण है। पश्यन अपि न पश्यति कहा, या कुछ कुछ समझ में आता है, दिखता है तो भी दिखता नहीं है, ज्यों की त्यों एज इट इज, हमारी आसक्तियों के कारण। तो सुनते जाओ और श्रद्धा से, या ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि हमारी श्रद्धा तो है इन शास्त्रों के वचनों में, किंतु हमारी निष्ठा नहीं है या दृढ़ संकल्प नहीं है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। ये ज्ञान तो हम मान लेते हैं लेकिन दृढ़ संकल्प नहीं है, निष्ठावान हम नहीं है, हम श्रद्धावान है, हम निष्ठावान नहीं है। तो श्रद्धावान व्यक्ति निष्ठावान कैसे बन सकता है? तो श्रद्धावान व्यक्ति को क्या करना होगा? आदौ श्रद्धा, फिर सत्संग करना होगा, सत्संग के बाद फिर भजन क्रिया भी है। वैसे कक्षा तो हो गई एक घंटे की, साधु संघ घंटे का, और भजन क्रिया कितने घंटे की? फिर 23 घंटे तो भजन क्रिया होनी चाहिए। अधो श्रद्धा साधु संघ तो हो गया, फिर भजन क्रिया, और 23 घंटे भजन क्रिया जब करेंगे तो फिर अनर्थ निवृत्ति होगी, अनर्थ निवृत्ति हो गई तो फिर निष्ठावान बन गए, दृढ़ संकल्प हुआ, बात पक्की हो गई, इंटेलिजेंस सेटिस्फाइड, बुद्धि का भी समाधान हुआ, और फिर हमने सब सुधार की हमारे जीवन में, ये नहीं चाहिए तो ये असत है, असत है ये सत है। वैष्णव, वैष्णव कौन है? असत संग त्यागात ए वैष्णवाचार, फिर परिवर्तन होगा, ये असत है, ये असत, असत संग त्यागात ए वैष्णवाचार। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण ही नहीं, श्रीमद् भागवत का श्रवण हुआ 7 दिनों के लिए, जब गोकर्ण कथा सुना रहे थे और उनके भाई धुंधकारी भी कथा सुन रहे थे, तो 7 दिवस कथा के अंत में तो एक हेलीकॉप्टर ही आ गया आध्यात्मिक जगत से, या छोटा विमान आया, और वो जो एयर होस्ट थे वो कहने, ए धुंधकारी आओ आओ कम, तो वे चढ़े सीढ़ी और अपने बैठे और बेड लगा दिया। अब इंजन शुरू होने वाला था टेक ऑफ के पहले, वैसे वक्ता ने पूछा गोकर्ण, ए हरिदास हुआ क्या? अरे कथा तो सभी ने सुनी, हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि आप बड़ा जंबो जेट लेके आओगे और जितने सारे कथा सुन रहे सभी को बिठा के आप भगवान के धाम ले जाओगे, लेकिन एक व्यक्ति को ही आप ले जा रहे हो, हुआ क्या? क्या डिफरेंस क्या है? इसने भी कथा सुनी, औरों ने भी कथा सुनी, तो कई सारी बातें उन्होंने उत्तर में कही है। उसमें से एक बात, वो हरिदास जो वैकुंठ से आए थे धुंधकारी को ले जाने के लिए, उन्होंने एक बात कही कि कथा सुनी लेकिन जैसे ही गेट के बाहर निकल चुके, कथा को पीछे छोड़ के आगे बढ़े हुए और कथा में लगे या भूल गए। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता था, कथा के समय तो श्रवण करता ही था, कथा के बाद मनन करता था, मनन जो भी सुना था उसको ध्यान करता था, स्मरण करता था, कॉन्टेम्पलेशन। जैसे गाय या भैंस या बैल या झटझट खा लेते हैं, वे दो बार खाते हैं पशु, पहले ऐसे खा लो फिर बैठ जाते हैं और जिसको पहले घास जो खाया था पुनः वो मुख में लाते हैं, उसको उसका जूस बनाते हैं और उसको पुनः खा या पी लेते हैं, तो फिर उससे उनका शरीर या शक्ति उनको प्राप्त होती है, उनका बनता है। फर्स्ट ईटिंग से नहीं, सेकंड ईटिंग, और फिर वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेस्ट करना होगा। तो श्रीमद् भागवत हमारे उतारना होगा अंतरंग में, ताकि रंग बदले हमारे दिल का हृदय का। तो सुनने सुनने भी अंतर है, सुनते तो सही है सभी है, लेकिन कुछ धुंधकारी जैसा सुनते हैं तो कुछ अन्य श्रोता जैसे सुनते हैं। हरी बोल।